हेडिंग है आलोच्य सीमा तक के हिंदी उपन्यासों में नारी जीवन का चित्रण। पृष्ठ संख्या 25। प्रस्तुत प्रबंध की समय सीमा है 1860 से 1995। वस्तुतः मानव जीवन के यथार्थ को उसी परंपरा, सातत्य और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। सन 1960 से 1995 तक के उपन्यासों में जो नारी चरित्र उपलब्ध होते हैं, उनके पीछे एक निश्चित मुकम्मल पृष्ठभूमि रही है। मनुष्य के विचार, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, इन सब के पीछे देशगत एवं कालगत परिवेश की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। आज यदि रुकोगी नहीं राधिका की राधिका, या मुझे चांद चाहिए की वर्षा वशिष्ठ, बढ़िया अंग्रेजी में कला, साहित्य, नाटक, सांप्रत्य जीवन आदि विषयों पर अधिकार पूर्वक अपने विचार व्यक्त करती हैं, तो यह सहसा या आकस्मिक नहीं है। उसके पीछे पिछली 1.5-2 शताब्दियों की गतिविधियां कारणभूत रही हैं। कहा गया है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आज न यूं ही निप जा, बीते कल से भ्रात, आज करेगा तय अभी कैसी होगी प्रात, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ, सूखे सेमल के वृंतों पर, लेखक डॉक्टर पारुकांत देसाई, टुकड़े टुकड़े जिंदगी कविता से, पृष्ठ संख्या 31। अभिप्राय यह है कि मनुष्य का व्यक्तित्व अपनी पारिपार्श्विक गतिविधियों एवं परिस्थितियों से निर्मित होता है। प्रसिद्ध इतिहासविद सिरीन मेहता का कथन है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, नोबडी कैन गो अबव द मिल्यूट, ब्रैकेट क्लोज। संदर्भ ग्रंथ द टाइम्स ऑफ इंडिया, दिनांक 10/6/96, पृष्ठ संख्या 3। अतः 60 के बाद के उपन्यासों में जो नारी चरित्र उभरा है, उसके सही सही मूल्यांकन के लिए पूर्ववर्ती परंपरा का विहंगावलोकन आवश्यक समझा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 26। हेडिंग क, प्रेमचंद्र पूर्व काल के उपन्यासों में नारी जीवन का चित्रण। पहले निर्दिष्ट किया जा चुका है कि पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत भाग्यवती, ब्रैकेट में 1877, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यह एक सुखद और आश्चर्यजनक संयोग है कि हिंदी का यह प्रथम उपन्यास ही नारी चेतना और नारी शिक्षा से संबद्ध है। फुल्लौरी आर्य समाजी सुधारवादी पंडित हैं, अतः यह उपन्यास उन्होंने नारी शिक्षा की प्रवृत्ति को केंद्र में रखकर लिखा है। भाग्यवती आज की सुशिक्षित नारियों की तरह तो सुशिक्षित नहीं है, परंतु उस युग में नारी जितना पढ़ सकती थी उतनी शिक्षा उसकी थी। उस शिक्षा के कारण ही बाद में पति द्वारा त्याग दिए जाने पर एक पाठशाला में अध्यापिका का काम करते हुए आत्मनिर्भर ढंग से स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन कर सकती है। बाद में जब उसके पति को अपनी गलती का एहसास होता है, तब वह उसे बुला लेता है। यहाँ यह तथ्य गौरतलब होगा कि भाग्यवती अपने पति से दबती नहीं है, वह अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का परिचय देती है। इसके मूल में नारी शिक्षा का तथ्य ही कारणभूत है। पैराग्राफ चेंज, प्रेमचंद्र पूर्व काल में पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, पंडित बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, लज्जा राम मेहता, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, मन्नन द्विवेदी आदि लेखकों ने क्रमशः परीक्षा गुरु, सौ अजान एक सुजान, अतखिला फूल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, लवंगी, निसहाय हिंदू, कल्याणी आदि उपन्यास मिलते हैं। इनमें फुल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, मन्नन द्विवेदी इत्यादि तो नवसुधारवादी लेखक थे, अतः उनकी नारी विषयक अवधारणा उदार एवं रूढ़िग्रस्तता से मुक्त थी। परंतु लज्जा राम मेहता, किशोरीलाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास आदि लेखक पुरानी सनातन पंथी विचारधारा के थे, अतः उन्होंने नारी का चित्रण अपने सनातनी एवं सामंतवादी मानस के अनुरूप किया है। वे नारी शिक्षा के भी घोर विरोधी रहे हैं। लज्जा राम मेहता कृत स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी का उद्देश्य भाग्यवती से नितांत विपरीत ध्रुव पर है। इसमें रमा शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली है और लक्ष्मी अशिक्षित और दूसरों पर निर्भर रहने वाली है। लेखक ने रमा की तुलना में लक्ष्मी के दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखी बताया है और परोक्ष ढंग से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों को पढ़ाने से सामाजिक पारिवारिक जीवन में समस्याएं पैदा होती हैं। पैराग्राफ चेंज, स्त्रियों के प्रति उनकी दृष्टि भी रीतिकालीन एवं भोगवादी रही है। गहमरी जी ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं जिनमें स्त्रियों की भूमिका कठपुतलियों की सी रही है। खत्री जी का तो परिवेश ही सामंतकालीन है, वहाँ कुछ तेजस्वी नारी चरित्र उभरे हैं, परंतु उनका भी परिचालन तो राजाओं और मंत्रियों द्वारा ही होता है। मन्नन द्विवेदी के उपन्यास में विशेषतः कल्याणी में हमें नारी विषयक गांधीवादी दृष्टिकोण मिलता है। यही दृष्टिकोण बाद में प्रेमचंद में भी मिलता है। वस्तुतः कल्याणी ब्रैकेट में 1920 प्रेमचंद युग की ही रचना है। प्रेमचंद पूर्व काल में सामाजिक उपन्यासों में उपर्युक्त उपन्यासों के अतिरिक्त नारी चित्रण की दृष्टि से जगमोहन कृत श्यामा स्वप्न ब्रैकेट में 1888, लज्जा राम कृत आदर्श दंपत्ति ब्रैकेट में 1904, पृष्ठ संख्या 27, बिगड़े का सुधार ब्रैकेट में 1907, अथवा सती सुखदेवी आदर्श हिंदू ब्रैकेट में 1914, किशोरी लाल गोस्वामी कृत त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी ब्रैकेट में 1890, लीलावती या आदर्श सती, चपला या नव्य समाज, पुनर्जन्म या सौतिया डाह ब्रैकेट में 1907, माधवी माधव या मदन मोहनी ब्रैकेट में 1909-10, अंगूठी का नगीना ब्रैकेट में 1918, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाट या देवबाला 1899, अतखिला फूल 1907, ब्रजनंदन सहाय कृत सौंदर्योपासक ब्रैकेट में 1912, राधाकांत आदि उपन्यासों को परिगणित कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज, जगमोहन के श्यामा स्वप्न में ब्राह्मण कन्या श्यामा और क्षत्रिय कुमार श्याम सुंदर की प्रणय कथा को लिया गया है। हालांकि इसका प्रेम वर्णन मध्यकालीन ढांचे का है और सखी दुती प्रेम पत्र मिलन विरह आदि के चित्र विद्यमान हैं। उसके प्राकृतिक वर्णन संस्कृत कवियों की स्मृति ताजा करा देते हैं, तथापि इसमें निरूपित अंतरजातीय विवाह की समस्या को उसे नव्य समाज एवं नवीन सामाजिक मान्यताओं से संबद्ध कर देता है। पैराग्राफ चेंज, लज्जा राम मेहता प्राचीन भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे और नवीन विचारों के विरोधी थे। यह पहले निर्दिष्ट किया जा चुका है कि उनके उपन्यास आदर्श दंपत्ति में पति पत्नी दोनों ही भारतीय संस्कृति के अनुसार एक दूसरे को प्रेम करते हुए आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। यह एक आदर्शवादी उपन्यास है और भारतीय सामाजिक पारिवारिक संदर्भ में प्राचीन परंपराओं की पक्षधरता करते हुए उनकी आदर्श परिणति की व्याख्या करता है। बिगड़े का सुधार या सती सुखदेवी नामक उपन्यास का नायक वनमाली बाबू नई सभ्यता का हिमायती है और उसकी पत्नी सुखदेवी एक सती साध्वी स्त्री है। वनमाली ने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की है और वह नई रोशनी की धुन में होटल की एक नौकरानी मेम से विवाह करता है, परंतु कुछ ही दिनों में उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है। परदेसीपन और नई रोशनी का भूत उतर जाता है और अपनी सती साध्वी स्त्री सुखदेवी को स्वीकार कर लेता है। अब उसे सुखदेवी स्त्रियों की रानी सी प्रतीत होती है। इसकी कथा भी 100 अजान 1 सुजान तथा स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी की परंपरा में आती है। पैराग्राफ चेंज, आदर्श हिंदू उपन्यास में पंडित प्रियानाथ और अनुज कांतानाथ की कहानी को लिया गया है। प्रियानाथ की पत्नी प्रियंवदा एक आदर्श हिंदू महिला है। कांतानाथ की पत्नी सुखदा वस्तुतः दुखदा है और अपने पति से निरंतर कलह करती रहती है। तीर्थ यात्रा में उसका सब कुछ लूट जाता है और अंत में वह सुधर जाती है। इसमें लेखक ने ब्राह्मण कुटुंब में सनातन धर्म दिग्दर्शन, हिंदुत्व का आदर्श, तत्कालीन समाज की त्रुटियां, परमेश्वर भक्ति का आदर्श आदि को प्रकारांतर से प्रस्तुत किया है। दरअसल भारतीय मेहता जी भारतीय संस्कृति के समर्थक एक अखबार नवीस कथाकार थे। अतः उनके उपन्यासों में प्राचीन भारतीय संस्कृति में निरूपित भारतीय नारी का वह आदर्श स्वरूप ब्रैकेट में सीता सावित्री वाला ही व्यंजित हुआ है। पैराग्राफ चीन, किशोरीलाल गोस्वामी प्रेमचंद्र पूर्व युग के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। ये निंबार्क संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके विचार भी सनातन हिंदू धर्म के अनुकूल हैं। त्रिवेणी या सौभाग्य श्री उपन्यास का नायक मनोहर दास एक धर्म प्राण व्यक्ति है। पृष्ठ संख्या 28। उसकी पत्नी त्रिवेणी एक आदर्श हिंदू सती साध्वी स्त्री है। नौका डूब जाने से मनोहर दास का अपनी पत्नी से वियोग हो जाता है। पत्नी वियोग से शोक संतृप्त होकर वह एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगता है। 3 वर्ष बाद कुंभ के मेले में त्रिवेणी और ससुर के पुनः दर्शन होते हैं। पत्नी को पाकर उसका जीवन पुनः सुखमय हो जाता है। यहाँ एक आदर्श हिंदू दंपत्ति और उसके आदर्शों का चित्रण हुआ है। लीलावती या आदर्श सती नामक उपन्यास में लेखक ने स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी वाली शैली में ही लीलावती और कलावती नामक दो स्त्रियों की कथा के माध्यम से पुराने प्राचीन आदर्शों की स्थापना और नवीन विचारों की भर्त्सना की है। लीलावती एक सती साध्वी स्त्री है। वह ललित किशोर से प्रेम करती है और उसके साथ विवाह करके सुखमय जीवन व्यतीत करती है। दूसरी तरफ कलावती तो लीलावती की दूर की बहन है। नव्य जीवन की दमक चमक से प्रभावित है। उसका प्रेमी बालकृष्ण एक लंपट व्यक्ति है जिसके साथ भागकर कलावती सिविल मैरिज करती है। उसकी वासना अतृप्त रहती है, अतः मौका देखकर वह अपने नौकर के साथ भाग जाती है। फिर तो यह सिलसिला उसके जीवन का नियम बन जाता है। अपनी अबाध यौन उच्छृंखलता के कारण एक घृणित रोग का शिकार होकर यमुना में कूदकर वह आत्महत्या कर लेती है। यहाँ दो विभिन्न परिणतियों के द्वारा विभिन्न विचारधाराओं को समानांतर लेते हुए भारतीय रूढ़िवादी आदर्श की लेखक ने हिमायत की है। पैराग्राफ चेंज, चपला या नव्य समाज उपन्यास में भी गोस्वामी जी ने अपनी उन्हीं आदर्शों की स्थापना की है। राजा राधा किशोर के दो पुत्र कमला किशोर और ब्रज किशोर में कमला किशोर दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है और नव्य समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रज किशोर आचारशील व्यक्ति है। कमल किशोर के दुष्कृत्यों के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, अतः वह आत्महत्या कर लेता है। इसमें लेखक के दो प्रतिपाद्य हैं। एक तो यह कि नवीन समाज का वातावरण अवांछित है क्योंकि वह कमला किशोर जैसे व्यक्तियों को जन्म देता है। पैराग्राफ चीन, पुनर्जन्म या सौतिया डाह नामक उपन्यास का नायक सज्जन सिंह नामक एक जमींदार है। सज्जन सिंह की पत्नी सुशीला अभिमानी और कुटिल स्वभाव की है। अतः सज्जन सिंह सुंदरी नामक एक स्त्री से प्रेम करते हैं जो बहुत ही विनम्र और मृदु स्वभाव की है। इस बात को लेकर घर में नित्य प्रति कलह होते रहते हैं। अतः जब सुशीला सुंदरी के सील स्वभाव से परिचित होती है तब वह स्वयं आग्रह पूर्वक सुंदरी का विवाह सज्जन सिंह से करा देती है। सुशीला और सुंदरी सौतन होते हुए भी दो बहनों की तरह रहती हैं। पैराग्राफ चीन, माधवी माधव या मदन मोहिनी उपन्यास में माधवी माधव नायक नायिका है और मदन मोहिनी उपनायक उपनायिका है। ये परस्पर प्रेम करते हैं। इनकी जोड़ी को लेखक ने आदर्श बताया है। इनका विवाह धर्मानुसार होता है। इनके पथ में बाधा डालने वाले अधर्मी पात्रों का दुखद अंत बताकर लेखक ने धर्म और नीति की श्रेष्ठता को प्रमाणित किया है। उसी प्रकार अंगूठी का नगीना में मदन मोहन और लक्ष्मी नायक नायिका है। रामशरण खलनायक है। वह अपने छल बल से लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता है, परंतु उपन्यास के अंत में सच्चे प्रेम की जय होती है और मदन मोहन और लक्ष्मी का विवाह हो जाता है। पृष्ठ संख्या 29। अयोध्या सिंह उपाध्याय के उपन्यास ठेठ हिंदी के ठाट में अनमेल विवाह के दुष्ट परिणामों को दिखाया गया है। उसकी नायिका देवबाला का विवाह दहेज के कारण उम्र में बड़े एक अधेड़ व्यक्ति से किया जाता है। फलतः देवबाला का जीवन नरक समान हो जाता है। उनके ही उपन्यास अतखिला फूल में लेखक ने धर्म की महत्ता को रेखांकित करते हुए धार्मिक अंधविश्वासों के कुपरिणामों को भी उद्घाटित किया है। पैराग्राफ चेंज। ब्रजनंदन सहाय पर बंगला के कथा साहित्य का काफी प्रभाव परिलक्षित होता है। सौंदर्योपासक उपन्यास में उन्होंने नायक के शाली प्रेम को चित्रित किया है, फलतः नायक की पत्नी भी दुखी रहने लगती है और अंततः वह मर जाती है। नायक के लिए रास्ता खुल जाता है और आधी घरवाली घरवाली बन जाती है, परंतु अंततः उसे भी तपेदिक ब्रैकेट में टीवी की बीमारी हो जाती है और अंततोगत्वा उसका भी निधन हो जाता है। नायक वियोगावस्था से संतप्त होकर किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। उनका दूसरा उपन्यास राधाकांत आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसमें राधाकांत और हरेंद्र नामक दो सहपाठी मित्रों की कथा है, जो दो खंडों में लिखी गई है। प्रथम खंड राधाकांत से संबद्ध है तो दूसरा हरेंद्र से। राधाकांत एक सामान्य किसान का बेटा है और उसमें अनेक मानव सहज दुर्बलताएं जिनके कारण उसका मानसिक अधःपतन हो जाता है, परंतु हरेंद्र के प्रयत्न से वह सुधर जाता है और अंत में स्वयं को एक आदर्श मित्र सिद्ध करता है। हरेंद्र की पत्नी जहां एक आदर्श हिंदू पत्नी है, वहां राधाकांत के जीवन में आने वाली स्त्रियां रूप जीवनिया प्रकार की हैं। पैराग्राफ चेंज। प्रेमचंद पूर्व काल के उल्लिखित उपन्यासों में यह निष्कर्ष निकलता है कि उन उपन्यासों में चित्रित नारियां प्रायः दो वर्गों में विभक्त हो सकती हैं। नवसुधारवादी लेखकों में सुशिक्षित नारी पात्र मिलते हैं, उन लेखकों में नारी शिक्षा, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा जैसे नारी चिंता से जुड़े प्रश्नों को भी उठाया गया है, परंतु सनातन पंथी लेखकों ने नारी शिक्षा का विरोध करते हुए शिक्षित नारियों के दाम्पत्य जीवन को असफल करार दिया है। इन लेखकों ने नारी के प्राचीन आदर्श को ध्यान में रखते हुए सेवा पति भक्ति जैसे भावों को सर्वोपरि स्थान दिया है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से इन नारी पात्रों में जीवंतता का अभाव परिलक्षित होता है। नारी का प्राय भोगवादी चित्रण हुआ है। यहाँ पर या तो कुलीन संभ्रांत परिवारों की महिलाएं हैं या फिर अपने रूप और शरीर का सौदा करने वाली रूप जीवनियां हैं। प्राय लेखकों ने नारी जीवन पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों को हेय बताया है। खत्री जी के उपन्यासों में नारी का सावंतकालीन रूप ही सामने आया है तो गहमेरी जी ने नारी का भोगवादी दृष्टिकोण से चित्रण किया है। इस समय के उपन्यास के संदर्भ में डॉक्टर मनोहर बंदोपाध्याय ने लिखा है, इनवर्टेड कॉमा ओपन, मोस्ट ऑफ दीज वर्क्स हाउएवर वेयर आइदर जर्नीइंग इनटू वाइल्डरनेस ऑफ इमेजिनेशन ऑफ फेबल्स सर्मस फॉर प्रीचिंग आइडियल्स फुल स्टॉप देयर वर ऑब्जर्व डिटेक्टिव वर्क्स टू सटाइज सेंसुअस टेस्ट ऑफ द रीडर्स फुल स्टॉप This had no realism to offer worth the name. Full stop. There was total anarchy in structure and unity of construction. Characterization was unknown. The novelist had no prishtha sankhya 30 specific objectives for their craft, nor was there any attempt to inform the reader about his ambience, much less about the country. Full stop. No author of realism could afford to ignore the political consciousness that had begun to surface all over the country. Full stop. Premchand opened this new vista, and it was he who started his readers with his stories and novels of down-to-earth reality relevant to the everyday life of his readers. Inverted comma close. Sandarbh Granth. Life and Work of Premchand. लेखक मनोहर बंदोपाध्याय, पृष्ठ संख्या 2। पैराग्राफ चेंज। वस्तुतः प्रेमचंद्र पूर्व काल में हिंदी उपन्यास का वास्तविक विकास नहीं हुआ था, यथार्थ मानव चरित्रों का उसमें अभाव सा प्रतीत होता है, अतः उसके नारी पात्र भी व्यक्तित्व संपन्न और जीवंत न होकर कठपुतली नुमा लगते हैं। सचमुच की नारी चेतना का विकास तो हमें सर्वप्रथम प्रेमचंद में ही मिलता है। वे ही हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो अपने समय के परिवेश की समग्रता से परिचित थे।